सत विचार और निध्यासन क्या है ये जानना चाहते हैं। सत विचार उसे कहते हैं जो सत्पुरुष के द्वारा प्रकट होता है। बाकी सारे विचार हैं जो मनुष्य प्रकट करते हैं, लेकिन सत विचार सत के द्वारा ही प्रकट होता है। इसीलिए जो गीता में लिखा है वो सद्विचार है, जो सुमता विलास में लिखा है वो सद्विचार है, जो वाणी में आया है वो सद्विचार है। मनुष्य के निर्णय का आधार जब तक सद्विचार नहीं होता उसकी बुद्धि भ्रमित रहती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि समाज में बड़े बड़े अच्छे विचार फैले होते हैं, लाखों करोड़ों लोग उसको उसका पालन करते हैं, यहाँ तक कि जो देश का संविधान होता है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं वो भी सांसारिक विचारों पर आधारित होता है, उसका भी सत विचार से कोई संबंध नहीं। इसीलिए यदि प्रकृति के बारे में सही निर्णय करना है, अपने बारे में सही निर्णय करना है, या ईश्वर के बारे में सही निर्णय करना है, तो आपको सत विचारों का स्वाध्याय करना ही पड़ेगा। क्योंकि जितनी भी सामाजिक चीजें हैं वो सब सांसारिक विचारों पर आधारित है, और जो सत्विचार है वो संसार से मुक्त करने के लिए। जितने भी विचार हैं बाकी वो सब इस वास्ते हैं, अच्छे से अच्छे विचार, कि हम संसार में सुख कैसे प्राप्त करें, संसार में अच्छी प्रकार मिलजुल के कैसे रहें, सामाजिक व्यवस्था कैसी रखें ताकि हमारी जिंदगी चैन से कट सके। तो ये सारा सारा विचार जो है ये प्राकृतिक जीवन के लिए है, लेकिन जब सत विचार की बात आती है तो महाराज जी कहते हैं कि अहम भाव जीव का मूल अज्ञान है। इसी को दूसरे शब्दों में महाराज जी कह रहे हैं, कर्तापन जीव का मूल अज्ञान है। जब कर्तापन ही अज्ञान है फिर बाद में बचा क्या, क्योंकि कर्तापन से वासना पैदा होती है, वासना तीन गुणों से युक्त होती है जिसको हम सतोगुण रजोगुण तमोगुण कहते हैं, और ये जो गुण हैं ये हमारे मन के अंदर होते हैं जिसको हम स्वभाव के रूप में जानते हैं। किसी व्यक्ति का स्वभाव सतोगुणी होता है, उसके अंदर दूसरों के प्रति सेवा भाव होता है, दूसरों के कल्याण की सोचता है, अपने कल्याण की सोचता है, और जो रजोगुणी स्वभाव है वो भोग विलास की सोचता है, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करने की सोचता है, और संसार में मैक्सिमम सुख मैं प्राप्त कर सकूँ इसके लिए उसकी ज़िंदगी बीतती है। और जो तमोगुणी जीव है सुख तो भोगना चाहता है लेकिन गलत तरीक़ों से, पाप करके, दूसरों को कष्ट पहुँचा के। तो ये तीन प्रकार के स्वभाव हमको समाज में देखने को मिलते हैं, लेकिन हैं ये प्रकृति के अंदर ही। और ये तीनों स्वभाव पैदा कहाँ से हुए, कर्तापन से पैदा हुए। तो इस स्वभाव के अनुसार हम कर्म करते हैं, कर्म देह से होते हैं, इंद्रियों से होते हैं। तो जितने भी कर्म करते हैं उनका फल भोगते हैं सुख रूप और दुख रूप। महाजी कह रहे हैं ये पांच विकार के अंतर्गत आते हैं। तीन गुण के बाद क्या आ गए आपके, पांच विकार आ गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अब सारा जीवन आपका जो प्राकृतिक जीवन है इन पांच विकार के अंतर्गत व्यतीत होता है। अब विचार करो, जिसका नाम ही विकार है वो आपको चैन कैसे दे सकता है? यहां आके पता लगता है कि जो कुछ भी सामाजिक जीवन सांसारिक जीवन है ये बंधन है। यहां क्यों बंधन है? क्योंकि इस जीवन से मनुष्य के विकार बढ़ते हैं। जिस जीवन से मनुष्य के विकार बढ़ते हों वो जीवन हुआ या नरक हुआ, विचार करके देखो। इसलिए सत्पुरुषों ने सांसारिक जीवन के बारे में सीधा सीधा निर्णय कर दिया, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं। राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, ये निर्णय आ गया संसार के बारे में। तो ये सत्विचार है, ये निर्णय सत्विचार के द्वारा हो रहा है, सांसारिक विचार के द्वारा नहीं हो रहा है। और आगे सत्विचार क्या कह रहा है कि मंगत सुखिया शोभया जिस शोभा पाई करता, जिसने ईश्वर के राज को जाना वही संसार में आकर परम सुखी हो जाता है। तो इसलिए अब मनुष्य का जीने का रास्ता संसार में बचा क्या? इस सत्विचार के अनुसार सोचे हैं तो मनुष्य का संसार में जीने का क्या रास्ता बचा? एक ही रास्ता बचा, जीना है तो प्रभु के लिए जी, नहीं तो तेरा जीवन यदि प्रभु के लिए नहीं व्यतीत हो रहा है तो वाणी कह रही है बिना विवेक मानुष जो होई पशु समान जीवन सुख होई। संसार में जिसको अच्छा जीवन कहा जा रहा है सत्विचार के निर्णय के अनुसार, सत्पुरुषों के निर्णय के अनुसार वो पशु जीवन है। तो इसलिए आप बताइए बिना गुरु के मनुष्य की गति कैसे होगी? क्योंकि सत्विचार गुरु से मिलेगा ना उसको। तो संसार का सारा विचार झूठा विचार है, गुरु का विचार सत्विचार है, वही सच्चा विचार है जो मनुष्य का कल्याण करता है। तो अब बातें ये इस प्रकार की समाज में क्या कर सकते हैं आप बताओ, कोई सुनेगा आपकी बातें? इसलिए ये रास्ता गुरु शिष्य के बीच का है। जिस शिष्य को गुरु पर पूर्ण भरोसा है, जिसने उस गुरु के आगे समर्पण किया है कि मैं समझ गया मेरा कल्याण गुरुदेव आपके हाथों में है, अब मैंने आपके मार्गदर्शन के अनुसार जीवन व्यतीत करना है, ऐसा निर्णय जिसकी बुद्धि का हो गया है वही सत्विचार करेगा। और सत्विचार की ताकत क्या है? सत्विचार संसार के सारे असत विचारों को काट देगा, संसार के हर निर्णय को ये सत्विचार काट देगा। और अंत में सत्विचार भी नहीं बचेगा, जो बचेगा उसका नाम है ईश्वर। तो ये द्वंद्व रूपी जगत है, द्वंद्व कहते ही हैं दो चीजों का जहां हमेशा आपस में क्लैश हो उसका नाम है द्वंद्व। जैसे कि देह है, इसका जन्म होता है और ये जन्म होते ही धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ने लगती है, तो इस शरीर के अंदर ये द्वंद्व खड़ा हुआ है, जीवन और मृत्यु का द्वंद्व खड़ा हुआ है, इसमें नहीं खड़ा हुआ है। इससे कोई बच सकता है इंसान इस द्वंद्व से? तो इस देह का स्वरूप ही जन्म मृत्यु है, इसका नाम है द्वंद्व। जवानी है तो बुढ़ापा साथ है इसके, जवानी की उमंग है तो बुढ़ापे की निराशा है, ये संगी है इसके। जिसको जवानी आएगी उसको बढ़ापा जरूर आएगा, जिसको जीने को मिलेगा उसको मौत का दर्शन जरूर करना पड़ेगा, इसको द्वंद्व कहते हैं। तो सारा का सारा जगत, यहां की हर वस्तु इसी द्वंद्व में खड़ी हुई है, इसीलिए इस प्रकृति को नाशवान और दुखरूप कहा जाता है। इस कारण कहा जाता है। मैं दूसरे रूप में देखता हूं उसको, मेरी तमन्ना थी हाई स्कूल में टॉप करूं, मैंने कर लिया, मैं बड़ा खुश हो गया, मैं समझता हूं मेरा जीवन सफल हो गया, मुझे सुख मिल गया। लेकिन टॉप करने वाला हमने तो सुखी देखा नहीं कभी, सारी जिंदगी वो कंपटीशन की दौड़ में ही दौड़ता रहता है। कभी चैन से बैठा? जितना आदमी बड़ा होगा उतना चैन से नहीं बैठेगा, वो लगातार बिजी रहेगा। वो बड़ा बना इसीलिए, महान कर्म करता है, बड़े से बड़े कर्म करता है, बड़े बड़े फल भोगता है और बड़े बड़े जो है दुख भी देखता है। तो इसीलिए संसार की जो दौड़ है ये द्वंद्व रूपी दौड़ है। महाराज जी कहते थे इसमें दुख मिश्रित सुख है, यहां सुख नहीं है, ऐसा सुख जिसमें दुख मिला हुआ है जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, और सुख भोगने के साथ ही वो दुख प्रकट हो जाता है। इस संसार में दुख मिश्रित सुख है और हम इस संसार में जीते हैं सुख प्राप्ति के लिए, जो मिल ही नहीं सकता आपको, जो चीज है ही नहीं, जहां पर मिलेगी कहां से। तो इसका दर्शन सत विचारों से होता है, संसार में ये विचार नहीं है। यहां आके पता लगता है कि क्यों ये बात कही जाती है कि बिना गुरु के गति नहीं है, तेरे जीने की डायरेक्शन ही सही नहीं है, तेरी गति इसलिए है ही नहीं, क्या है तेरी दुर्गति है। सांसारिक जीवन यदि तूने सफल जीवन भी व्यतीत किया है वो तेरी दुर्गति है। जब तू सत्विचारों को जानेगा समझेगा तब पता लगेगा कि मैंने अपने हाथों से ही अपना गला घोट लिया, कितनी कीमती आयु थी मैंने कैसे बर्बाद की है। जब भी तेरी बुद्धि की आँख खुलेगी तो वो आँख सत्विचारों के द्वारा ही खुलेगी। तो जब ये जीव इस प्रकार सत्विचारों का गहरा स्वाध्याय करता है, और गहरा स्वाध्याय इसलिए ये बात कही जा रही है, मान लिया समता विलास आपके सामने मौजूद है, केवल सत्विचार है इसमें, कुछ भी नहीं है। और ये ऐसा ऐसा सत्विचार है, एक समता विलास पूरे संसार के प्रति आपकी जो आसक्ति है, जिस दिन भी ये विचार आपकी बुद्धि में समझ आ जाएगा 100% आपकी आसक्ति संसार से गायब हो जाए। तो बताइए कि इस संसार में सुख का निश्चय बचेगा आपके लिए? इंसान इस संसार से आसक्ति जब गायब होगी तो सुख का निश्चय संसार में बना रहेगा फिर भी आपका क्या? तब आपको याद आएगा कि उपनिषद क्यों कह रहा है ये बात कि दुखम सर्वम अनुस्मृत्य, मत भूलो कि सब कुछ दुख ही है। तो जीने की डायरेक्शन क्या है फिर, किस सिद्धांत को लेकर जीऊं? वो कहते हैं काम भोगान निवर्तयेत। तो जीने की डायरेक्शन क्या है? कामनाओं और भोगों से निवृत्ति प्राप्त करो। तेरा हर अगला वर्ष ऐसा आए तुझको पता लग जाए, अपनी डायरी यदि तू मेंटेन कर रहा है कि मेरे अंदर कितनी कामनाएं कम हुई, कितनी भोग वासना मेरे अंदर कम हुई, ये मापदंड है तेरी उन्नति का। और सांसारिक उन्नति का मापदंड क्या है? पहले तेरी कितनी पे थी, अब कितनी मिल रही है, पहले तेरे घर में क्या क्या आइटम्स थे, अब कितने आइटम हैं, अगले साल कितने आइटम होंगे, ये सांसारिक उन्नति का मामला। जो हमारा पतन है उसको सांसारिक लोग उन्नति करके कहते हैं। तो ये अंतर है सत विचार में और असत विचार में, सांसारिक विचार में और आध्यात्मिक विचार में, गुरु के विचारों में और संसारी गुरुओं के विचार में। तो ये डिफरेंस दिन और रात के बराबर है, दोनों का कोई मेल ही नहीं है। इसलिए यदि किसी ने भी कुछ सही रास्ता सीखना है जीने का, तो केवल गुरु ही सिखा सकता है, और संसार में मनुष्य पैदा नहीं हुआ उसके लिए। यदि मनुष्य है भी कोई तो वही मनुष्य होगा इस मार्ग पे आपको आगे बढ़ाने वाला, जो उस गुरु के निश्चय के अनुसार अपने निश्चय को बदल चुका है, वो भी इस मार्ग का राही है, आपको भी सहायता कर देगा इस मार्ग पे चलने में, क्योंकि हर व्यक्ति साथी ढूंढता है ना। जिस मार्ग पर चलना चाहता है, कहता है दूसरा भी कोई चल रहा है नहीं चल रहा है, दूसरे को चलता हुआ देखकर ही निर्णय करता है कि मैं भी जरूर पहुंचूंगा ठीक जगह पर। तो यह है सत्विचार। इस सत्विचार के अनुसार निरंतर ईश्वर की ओर अग्रसर होने के लिए गुरु आपसे कहता है कि अंतर्यामी प्रभु की याद करो। अभी हम बाहरी संसार की याद करते हैं, संसार के भोगों की याद करते हैं, भोगों के लिए संसार के लोगों की याद करते हैं, संसार की वस्तुओं की याद करते हैं, यही तो करते हैं हम लोग। जब तेरा निर्णय हो गया कि ये दुखरूप संसार है, फिर किसकी याद करेगा तू? संसार से हटके कोई वस्तु आपको दिखाई नहीं पड़ रही है? भाई जो वस्तु भी आप देख रहे हो वो संसार में ही तो है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो प्रभु अंतर्यामी है, वो अंदर है तेरे, इसलिए तू उनकी अंदर याद कर। तो अंदर याद तू तभी कर पाएगा जब तेरे अंदर ये विवेक टिकेगा, ये समझ तेरे अंदर टिकेगी। तो तेरा मन ही नहीं करेगा कि दुनिया को याद करने का। जब विवेक तेरे अंदर पक्का होगा तो मन करेगा दुख देने वाली चीजों को याद करेगा? मन हमेशा सुख देने वाली चीजों को याद करता है। इसके अंदर जो उमंग पैदा होती है सुख देने वाली वस्तुओं को प्राप्त करने की पैदा होती है। जब निर्णय हो गया इसका कि ये तो वास्तव में लग रहा था कि सुख देगा संसार, लेकिन ये तो दुखदाई है, तो तेरा दिल वहां से टूट जाता है। फिर आशा कहाँ जागृत होती है? ईश्वर में आशा जागृत हो जाती है कि जितना दिन भी चल लूंगा मैं, जितना समय भी प्रभु की याद में लगा दूंगा, वो मेरा निरर्थक नहीं जाएगा। निरर्थक क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि देह झूठी है अवश्य, ये कभी भी मर सकती है, लेकिन मेरी कमाई मेरे संग रहेगी, ये इसके अंदर विश्वास रहता है। क्योंकि जीव की मौत नहीं है, देह की मौत है, या यूं कह लें कि जीव के लिए देह का परिवर्तन है। तो भक्ति तो आपने देह के साथ ही करनी है ना, बिना देह के तो भक्ति हो नहीं सकती आपकी। इसलिए वर्तमान देह जो आपको मिली है वो केवल ईश्वर की याद करने के लिए मिली है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिली है। मानुष्य जन्म सफल होवे जब प्रभु दाता चित आए, प्रभु के सिमरन कारणे ये दुर्लभ जीवन पाए। वाणी बड़ा स्पष्ट निर्णय दे रही है। तो उसका अंदर से वन पॉइंट प्रोग्राम होता है जीने का, ईश्वर प्राप्ति। तो इस निश्चय के साथ जो व्यक्ति प्रेम से प्रभु की याद करता है उसका नाम है निधिध्यासन। तो वैसे निधिध्यासन का दूसरा मीनिंग भी होता है प्योर मेडिटेशन। तो अभी हम सिमरन करते हैं, निधिध्यासन नहीं कर पाते क्योंकि हमारा प्योर मेडिटेशन नहीं है, ना हमारे अंदर विवेक कायम है। अभी वो भी फ्लिकर कर रहा है, डोल रहा है वो, ना अभी ठीक प्रकार से संसार की समझ है, ना करतार की समझ है। तो हम निधिध्यासन करने की स्थिति में नहीं है। तो हमारे लिए एक टर्म यूज की जाती है, एक शब्द यूज किया जाता है सिमरन। तो हम सिमरन करते हैं, प्रभु के नाम का सिमरन करते हैं, और वो जो नाम है वो प्रभु रूप ही होता है। लेकिन कब होता है वो? जब गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार हम मंत्र का सिमरन करें। तो जिस प्रकार प्रभु गुरु रूप में प्रकट हुए हैं उसी प्रकार प्रभु मंत्र रूप में भी प्रकट होते हैं। और गुरु का और मंत्र का एक ही काम होता है कि हमको अंतर्यामी ईश्वर तक ले जाना, इनका एक ही काम होता है। क्योंकि बाहर वो अंतर्यामी प्रभु ही प्रकट हुए हैं इसी वास्ते कि तू मेरे पास तक आएगा कैसे, पहुंचेगा कैसे। तो इसीलिए वो अंतर्यामी ईश्वर तक पहुंचाने के लिए प्रभु कृपा करते हैं संसारी जीवों के ऊपर गुरु रूप में और मंत्र रूप में। तो गुरु क्या है? वो सत्विचार है। गुरु के सत्विचारों के द्वारा आपको जीवन की समझ आती है, अंदर की समझ आती है, जीवन की सफलता किस में है इसकी समझ आती है। और मंत्र के द्वारा आप रास्ता तय करते हो अंदर पहुंचने का। इस प्रकार धीरे धीरे आप ईश्वर तक पहुंच जाते हैं। तो यहां आके पता लगता है कि सत विचारों का महत्व मनुष्य जन्म में कितना है। यहां आके पता लगता है कि सत्संग का मनुष्य के जन्म में कितना महत्व है। केवल सत्संग नहीं कि आज तो मैंने बड़े अच्छे अच्छे भजन सुने थे, क्या शानदार भजन थे, मेरा मन ऐसे रम गया उसमें, मुझे तो दुनिया की याद ही नहीं रही। ये भजन सुनने वाला सौदा नहीं है। सत्विचार मनुष्य के निश्चय को बदलता है। भजन मन का मनोरंजन है, मन लग जाता है, निश्चय नहीं बदलता। तो बिना सत्संग के आपका कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए सत्संग का मतलब ये होता है कि सत्पुरुष के द्वारा प्रकट विचारों का विश्लेषण करना, ताकि उन विचारों पर मैं मनन करने में सफल हो सकूं। मनन करोगे कैसे? आप पढ़ लोगे, आपको समझ ही नहीं आई। तो सत्संग आपकी सहायता करता है उन शास्त्रों का जो कुछ भी रियल अर्थ है उसको समझने में आपकी सहायता करता है। इसलिए एक तरह की ये स्कूलिंग है। जैसे कोई भी टेक्स्ट बुक बिना स्कूल के आप समझ पाते हो क्या? कहीं तो आपको गाइडेंस चाहिए उसको समझने के लिए। पढ़ते तो आप खुद ही हो, एग्जाम भी खुद ही देते हो, लेकिन समझने के लिए कोई स्कूल तो चाहिए उसको। तो जिस प्रकार सांसारिक विद्या के लिए हमको स्कूल चाहिए, उसी प्रकार अध्यात्म विद्या के लिए हमको सत्संग चाहिए। और सत्संग का मतलब ये नहीं होता कि 100 लोग बैठे हों तभी सत्संग होता है, केवल 2 बैठे हों तब भी सत्संग होता है। लेकिन सत्संग कब होगा? जब एक समझाने वाला हो और एक समझने वाला। समझाने वाला निष्काम भाव से समझाए, समझने वाला निष्काम भाव से समझाए, उसके अंदर भी कोई लालच ना हो, उसके अंदर एक ही तड़प हो कि मैंने ईश्वर विज्ञान को समझना है, ईश्वर की तरफ बढ़ना है। सत्संग तो तभी होगा ना। तो इसीलिए यदि कोई विचारवान है व्यक्ति तो सत्संग अकेले भी हो सकता है। अकेले किस रूप में होगा? सत्पुरुष के ग्रंथ आपके सामने हैं, आपके अंदर यदि कैपेबिलिटी है उनको समझने की तो आप गहराई से समझते हो उनको, समझने और गहरे मनन में उतर जाते हो आप। लेकिन उसके लिए योग्यता चाहिए ना, फिर नहीं तो भ्रमित भी हो जाओगे आप, कुछ का कुछ समझते रहोगे आप। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इस जीव को सत्संग चाहिए ही चाहिए। तो धीरे धीरे जब ये सत्विचार के अनुसार हमारे जीवन का निर्णय बदलता है, तब जो हमारा सांसारिक पुरुषार्थ है, जो हमारे कर्म हैं, वो परोपकारी कर्म होते हैं, निष्काम कर्म होते हैं। और मन में जो याद है वो संसार की छोड़कर प्रभु की याद होती है, बड़े प्रेम से याद होती है और बड़ी तड़प के साथ याद होती है। हे प्रभु, इतना जीवन तो निकल गया, आप पता नहीं कितने दिन बचे हैं, अब तो अपनी तरफ खींच मुझे, ये तड़प होती है इसके अंदर। ऐसा व्यक्ति समय कैसे बर्बाद करेगा बताओ मुझे? ऐसा व्यक्ति गुरु की बात जरूर मानेगा। गुरु कह रहा है प्रेमी गुजरान वाला जीवन जियो, कोई परिभाषा सिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसा व्यक्ति खुद ही सीख जाएगा गुजरान वाला जीवन क्या होता है। कि बेयर मिनिमम पर गुजारा करना सीखना, क्योंकि वक्त ही नहीं है मेरे पास, इतना कीमती वक्त मैं इन कामों में कैसे खर्च कर सकता हूँ? मेरी मंजिल तो प्रभु है, मैं तो उधर जाना है, वक्त कहाँ है मेरे पास? वो मोह में आकर यह वक्त बर्बाद नहीं करता। लोभ में आकर वक्त बर्बाद नहीं करता, वो अंतर्यामी प्रभु की याद प्रेम से करता है और कोई बहानेबाजी नहीं करता। जिस माँ का बेटा खो गया हो उसे कहना पड़ता है बेटे की याद करो, उस माँ से किसी को कहना पड़ता है कि बेटे की याद करो? जिसको बेटे से प्रेम है तो ऑटोमेटिकली याद आएगी उसकी, वो बिछड़ा हुआ है, प्रिय चीज आपकी बिछड़ी हुई है तो उसका तो बल्कि खिंचाव और बढ़ जाएगा आपके अंदर, हर समय याद आएगी। तो जिस प्रभु से आप बिछड़ गए हो वो प्रभु आपसे दूर हो गया है वो अंतर्यामी, तो कैसी अजीब अजीब सी बात है वो अंतर्यामी और मैं उससे बिछड़ा हुआ हूं। अपनी ही गलत शिक्षा के कारण, गलत लोगों के बीच में पलने के कारण, जिन्होंने मुझको संसारी संस्कार दिए, आध्यात्मिक संस्कार दिए ही नहीं, तो इतनी बड़ी मेरी आयु बीत गई अंधकार में, अभी भी मैं लापरवाही करूंगा, ये कैसे संभव है? तो वो पूरी ताकत लगाता है, पूरी सामर्थ्य से सत्विचारों का स्वाध्याय करता है, फिर उनको जीवन में धारण करने की कोशिश करता है ताकि जल्दी से जल्दी मैं निदिध्यासन में सफल हो सकूं। तो ये खेल है आपके जीवन में सत्विचारों का और निदिध्यासन का। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।